कुंज बिहारी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण जय राधा माधव कुंज बिहारी। आवाज नहीं आ रही है। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी।
गोपी जन वल्लभ
गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वन चारी। यमुना तीरा वन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय
राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री लाडली लाल जी की, बलसाना धाम की, थाई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जयमुदीरये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। तो आज हमारी यात्रा गोवर्धन में गई थी और वहां पर हम कुसुम सरोवर में गए थे। तो कुसुम सरोवर में कुछ कथाएं ऐसी हैं जो हम आज नहीं भूले सुबह। जब राधा रानी का जन्म हुआ तो हमने आपको बताया था कि नारद मुनि ने वहां के गए नारद मुनि, और नारद मुनि ने उत्सव करने को बताया। जब उत्सव करने को बताया तो सब लोग तुरंत उत्सव की तैयारी में चले गए और राधा रानी और नारद मुनि अकेले रह गए। तो उस समय राधा रानी ने नारद मुनि को अपनी 16 साल की उम्र की किशोरी अवस्था का दर्शन दिया। तो नारद मुनि बार बार बेहोश हो गए, हर बार गिर गए, रोमांच हो गया, गदगद हो गए, फिर बेहोश हो गए, फिर होश में आए, फिर दंडवत प्रणाम, फिर होश में आए, फिर बेहोश हो गए। इसे बहुत देर तक चलता रहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें आपके अष्ट सखियों के साथ दर्शन करना है। तो राधा रानी ने कहा कि आप कुसुम सरोवर चले जाओ। तो नारद मुनि वहां से रावल से नाचते हुए गाते हुए बेहोश होते हुए आनंद विभोर होते हुए वहां से पहुंचे कुसुम सरोवर। तो वहां पर माधवी गोपी ने नारद मुनि को हाथ पकड़कर कुसुम सरोवर के दक्षिण कोने पे स्नान कराया, और वो स्नान करने के बाद नारद मुनि नारदीय गोपी बन गए और उनको माधवी गोपी ने हाथ पकड़कर बड़े प्रेम से, कुसुम सरोवर के मध्य में एक सुंदर कमल है जो हमें दिखाई नहीं देता है, एक सुंदर कमल है सुनहरे रंग का, उसमें रत्न सिंहासन है, उसमें राधा और कृष्ण विराजते हैं, और उस कमल की बीच का जो भाग है उसके 8 मेन पंखुड़ियां हैं जिसमें 8 सखियां खड़ी हैं और विविध प्रकार से नाना प्रकार से ठाकुर जी की सेवा कर रही है। उस कमल के अनेक हजारों पंखुड़ियां हैं, बाकी सखियां और जो मंजिरियां हैं वो खड़ी हैं और वो सब भगवान की सेवा कर रही है। और इस दिव्य वातावरण में माधवी गोपी नारदीय गोपी को हाथ पकड़ के सबके बीच में लेके जाती है, बीच वाले कमल के दल में जिसमें राधा और कृष्ण विराजमान है, उसके हाथ में चामर देती है और नारदीय गोपी चामर से ठाकुर जी की सेवा करती है। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन। सुंदर जो दृश्य है भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं, वो सुंदर अनुभव नारद मुनि को मिलता है और फिर माधवी गोपी उनको उनका हाथ पकड़ के दक्षिण कोने में लेके आती है, फिर नहलाती है, फिर नारद मुनि बन जाती है नारदी गोपी से, और 7 अष्ट सखियों के साथ में उनको दर्शन मिलता है। उसके पहले दर्शन मिलने के पहले वाल्मीकि गोपी को मिलने के पहले नारद मुनि आकर अशोक वन में बैठ जाते हैं और अशोक वन में अशोक के वृक्ष हैं बहुत सारे। कुसुम वन के अंदर एक बहुत सुंदर वन है जो अशोक वन कहलाते हैं। वो जब हम गए थे उसके पास में था वो, और उसमें बैठकर नारद मुनि जब ध्यान लगाते हैं, ध्यान में मग्न हो जाते हैं, तो ध्यान में क्या देखते हैं कि जिस अशोक वृक्ष के नीचे वो बैठे हैं वो वृक्ष और बाकी सारे वृक्ष जितने भी वृक्ष वहां पर हैं सभी गोपियां बनकर सज सज कर रास में प्रवेश कर रहे हैं। तब वो समझ जाते हैं कि साधारण वृक्ष नहीं है, ये सब गोपियां हैं, ये सब ऋषि मुनि हैं, जो भगवान के परम भक्त हैं, जो ऋषि दिन में वृक्ष के रूप में रहते हैं और रात में सखियां बनकर रास में प्रवेश करते हैं। एक और भी कहानी आती है कि नारद मुनि भगवान से, उन्होंने राजा रानी से आज्ञा पाई कि आप यहीं रहो और भगवान की विग्रहों की पूजा कैसे की जाती है उसका लेखन करो। तो वो कहते कि मुझे दक्ष राजा का शाप है, किसी भी जगह पर मैं 3 दिन के ऊपर नहीं टिक सकता हूं, तो ये कैसे होगा। तो राजा रानी ने एक बहुत बड़ी अच्छी बात बताई हमको। वो कहते हैं कि दक्ष राजा ने आपको जो शाप दिया था वो भौतिक जगत के लिए था, भौतिक जगत में किसी भी लोक में आप 3 दिन के ऊपर नहीं रह सकते हैं, लेकिन ये मेरा दिव्य धाम है, ये भौतिक धाम की गिनती में नहीं आता है, इसलिए दक्ष राजा का शाप जो है आपको यहां पर लागू नहीं, आप आराम से रहिए। नारद मुनि बहुत नाचते हुए कूदते हुए, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण राधिका रमण नामे, बहुत सुंदर वीणा बजाते हुए नारद मुनि कुसुम सरोवर के बाईं ओर गए और वहां पर अभी भी नारद वन है और वहां पर नारद कुंड है, उसके किनारे नारद मुनि ने तपस्या किया है। ऐसे भी कथा आती है कि नारद मुनि ने शिवजी से मंत्र लिया था इस अभिलाषा से कि राधा कृष्ण की माधुरी लीला का दर्शन मिले, तो वो तपस्या भी उन्होंने नारद वन में की है नारद कुंड के पास रहते हुए, और इस मंत्र के जप की वजह से वृंदा देवी वहां पर आती है और नारद मुनि को हाथ पकड़कर राधा कुंड ले जाती है। वहां पर दोबारा राधा कुंड में स्नान कराकर नारदीय गोपी बनाकर राधा कृष्ण की, जो आपने बताया आज 11:48 पर जो राधा कुंड की लीला होती है उसका दर्शन देते हैं। सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वहां पर। और नारद मुनि ने क्या दर्शन किया कि भगवान, हम जो कुसुम सरोवर के आगे चले जाएंगे, गए नहीं आज लेकिन थोड़ा आगे जाएंगे, तो वहां पर ग्वाल खोखरा है। ये जो ग्वाल खोखरा जगह है, ये ग्वाल खोखरा जगह भगवान के साक्ष्य रस में बहुत प्रधान स्थली है। सबसे प्रधान स्थली जो है भगवान के साक्ष्य रस के वो पावन सरोवर है, उसके बाद में ग्वाल खोखरा है। तो ग्वाल खोखरा में भगवान बहुत जल्दी जल्दी दोपहर का प्रसाद ले लेते हैं ग्वाल वालों के साथ बैठकर, उस पोखरा के आसपास बैठकर सुंदर कमलाकृति आकार में बैठकर दोपहर का भोजन करते हैं और ग्वाल वालों को यहां वहां खेल में लगाकर तुरंत खुद निकल जाते हैं, क्योंकि वो व्याकुल हो जाते हैं। दोपहर जब 12 बजे का समय होता है जाकर गोपियों से लीला करते हैं, उस लीला का दर्शन नारद मुनि ने किया। और ऐसे भी कथा आती है कि कृष्ण भगवान ने उनको भक्ति सूत्र लिखने का आदेश दिया, जो आज नारद पंचारत्र सूत्र के नाम से प्रख्यात है। तो ये नारद वन की कथा हुई। उसके पहले एक वन आता है जिसका नाम है श्याम वन। वो श्याम वन के अंदर एक श्याम कुटी नाम की जगह है और उसमें रत्न सिंहासन हुआ करता था पहले, जिस पर राधा रानी को बिठाकर सखिया उनकी सेवा करती थी, लेकिन व्योमासुर नाम के राक्षस ने उस सिंहासन को लेकर वो भाग गया। फिर भगवान ने उसका काम्यवन वध किया है। लेकिन उस जगह पर कृष्ण बलराम एक बार अपनी सखियों को लेकर लीला कर रहे थे, लोग गीत गा रहे थे, नृत्य कर रहे थे, गोपियां वाद्य बजा रही थी, बहुत सुंदर सुंदर गोपियां जो है सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के साथ सब गोपियां वहां पर कृष्ण बलराम के साथ में आनंद ले रही थी, उनको सुख दे रही थी। तो वहां पर शंखचूर नाम का राक्षस आता है, वो कुबेर का मित्र था, बहुत धनवान था, उसके पास बहुत धन था, अपने ऐश्वर्य और धन के वजह से उसके बहुत गर्व था और बहुत एरोगेंट था वो, बहुत उद्दंड था। तो वहां पर आता है, देखता है, अरे ये दो छोटे छोटे ग्वाल बाल हैं, इनके हमें इतनी सुंदर युवतियां आनंद ले रही हैं, दुनिया की हर सुंदर वस्तु मेरी होनी चाहिए, कुछ कुछ हमारे जैसा ही है वो, है ना। उनको लगता है हर जीवन की सुंदर वस्तु हमारे भोग के लिए मिलनी चाहिए, आई मस्ट एंजॉय ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स। लेकिन जब तक हम ऐसा सोचते हैं तब तक हम भगवान के शत्रु हैं, भगवान के विद्रोही हैं और भगवान के कंपिटिटर भी हैं, गॉड्स कंपिटिटर। जो भगवान के भोग की वस्तु है, जब हम हमारे भोग के लिए उसका विचार करते हैं, यानी कि हम भगवान के शत्रु हैं। तो शंखचूड़ जो है वो सोचता है कि ये सब स्त्रियां मेरी होनी चाहिए, इसलिए वो कृष्ण बलराम के होते हुए उनको छोटे से ग्वाल बाल समझकर उनके सामने ही ये गोपियों को भगा देता है, मतलब उनको डरा धमका कर अपने पीछे आने को बोलता है और उनको भगा देता है। तो गोपियां चिल्लाने लगती, कृष्ण बलराम कृष्ण बलदेव हमें बचाओ, ये राक्षस उनको भगा के ले जा रहा है। तो उस समय बहुत बड़े बड़े पत्थर के बड़े लॉग्स उठाकर, बड़े बोल्डर्स उठाकर भगवान और कृष्ण बलराम उनके पीछे भागते हैं। गोपियां भी भाग रही हैं, शंखचूड़ उनको भगा रहा है, उनके पीछे कृष्ण बलराम भाग रहे हैं। कुछ समय में भगवान गोपियों को भागकर पार कर लेते हैं और बलराम जी को कहते हैं कि गोपियों की आप रक्षा करना, मैं अभी आ रहा हूं। और फिर बलराम जी पीछे रह जाते हैं और कृष्ण भगवान भाग के राक्षस का पीछा करते हैं। राक्षस बहुत दूर भागता है क्योंकि वो डर जाता है कि जब देखता है कि बालक तो थे लेकिन इतने बलशाली रूप में मेरे पर अटैक कर रहे हैं, तो भाग जाता है। दूर जाकर फिर राक्षस का भगवान एक ही मुक्की से वध कर देते हैं, एक ही प्रहार करते हैं उसके सर पर, तो वो मर जाता है और उसके शंख नाम का एक बड़ा रत्न उसके सर पे होता है, जो उसके सौंदर्य का, प्रभाव का और बल का भी प्रतीक था। वो उसको भगवान निकाल लेते हैं और सुंदर वो शंख जैसा मणि जो था वो लाकर बलराम जी को सब गोपियों के सामने उनको भेज देते हैं। मुझे शंखचूड़ की जब मृत्यु होती है तो उसके शरीर से जो ज्योति निकलती है वो कहां जाती है, किसी को पता है? वो जाकर राधा रानी के बड़े भाई श्रीदामा के शरीर में लीन हो जाती है। अरे ये जो कथा सुन रहे हैं तो पूछते हैं कैसे कैसे हुआ, तो इसके पीछे एक कहानी ऐसी है। गौलोक वृंदावन में राधा और कृष्ण एक बार लीला कर रहे थे, नहीं कृष्ण और विरजा गोपी लीला कर रहे थे, जो नदी के रूप में वहां विराजमान है। गौलोक धाम को, वैकुंठ को भौतिक जगत से वो अलग कर देती, बीच में जाती है विरजा। जब रजोगुण से मुक्त हो जाते हैं तो हम विरजा को पार कर सकते हैं। तो विरजा गोपी के साथ में भगवान एकांत में लीला कर रहे थे, तो राधा रानी यहां पर सज कर तैयार हो रही थी कृष्ण भगवान को मिलने के लिए। ऐसा होता है कि वो कृष्ण भगवान राधा रानी को पहले मिलते रहते हैं। सच कथा ऐसी है कि राधा रानी कृष्ण भगवान को मिलती रहती है और अचानक राधा रानी भाव में बेहोश हो जाती है, तो उसको छोड़कर तुरंत कृष्ण भगवान विरजा नदी के, विरजा गोपी के कुंज में चले जाते हैं और श्रीदामा को कहते हैं कि आप यहां रुको और हमारे कुंज का रक्षण करो, किसी को अंदर आने मत दो। तो वहां पर एकांत में वो निवास करते। इसके बाद में राधा रानी होश में आती है, देखते कृष्ण नहीं है, बड़ी व्याकुल हो जाती है, घर चली जाती है, दोबारा श्रृंगार करती है और करोड़ों गोपियों को लेकर एक दिव्य रथ में जिसमें करोड़ों गोपियां बैठी हुई है, उस रथ का वर्णन इतना सुंदर वर्णन किया गया है कि हम नहीं कर सकते उस वर्णन को। मानो पूरा शहर का शहर एक रथ के हम, उसके अंदर करोड़ों पहिए थे उस रथ के ऊपर और स्वर्ण रत्न अलंकार से सुशोभित प्रकाशित रथ, बीच में राधा रानी बैठे हुए और करोड़ों गोपियां उनको गीत गाते हुए रिझाते हुए वो रथ जो है वहां जा रहा है जहां पर कृष्ण भगवान विरजा के साथ में लीला कर रहे हैं। रथ से उतरते राधा रानी उतरती है और विरजा के कुंज में प्रवेश करने का प्रयास करती है, तो श्रीदामा उनको रोकते हैं, वो कहते हैं आप यहां प्रवेश नहीं कर सकते। जैसे ही राधा रानी की आवाज आती है इनकी बहस शुरू होती है, राधा रानी और श्रीदामा की, भाई बहन है वैसे वो, लेकिन वो अभी कृष्ण की सेवा में। आवाज सुनते ही विरजा नदी वहां से तुरंत भाग जाती है, विरजा गोपी और कृष्ण भगवान वहां से चले जाते हैं। तो श्रीदामा से बहस करके, झिकझिक करके सीतामा को पार करके राधा रानी विरजागंज में प्रवेश करती है, उसको किसी पे किसी को नहीं पाती वहां पर वो। फिर विरजा नदी के विरह, विरजा गोपी के विरह में भगवान गौलोक के यमुना जी के पास बैठकर विलाप करते हैं। फिर विरजा नदी वहां पर आती है, फिर उनका मिलन होता है। इस बार दोबारा राधा रानी को सीतामा रोकते हैं, तो सीतामा को राधा रानी साप देती है, तो राक्षस बन जा। सीतामा को राधा रानी को साप देते हैं कि तुमको पृथ्वी पर जाना होगा और 100 साल तुम अपने प्रियतम से विरह में रहोगी अलग होकर। तो वहां पर कृष्ण आ गए, उन्होंने कहा दोनों ने अपनी इच्छा को साप दे दिया है, बड़ी परेशानी का काम कर दिया है। तो फिर वही सीतामा जो है सीतामा बनकर भी आते हैं और शंखचूड़ राक्षस बनकर भी आते हैं एक ही समय पर। राधा रानी फिर अवतार लेती है और आप जानते हैं कि 10 साल कृष्ण भगवान के साथ संग करके ब्रज में 100 साल तक विरह में रहती है। तो शंखचूड़ का वध होने के बाद में इसी के कारण उसकी जो ज्योति है वो सीतामा के शरीर में विलीन हो गई, क्योंकि वो सीतामा का ही अवतार था उनका शाप पूरा करने के लिए। तो ये श्याम कुटी की लीला है। श्याम कुटी में अभी भी रत्न सिंहासन की जगह पर एक छोटा सा आसन रखा है जहां पर रत्न सिंहासन हुआ करता था। और श्याम कुटी में श्याम वन में भगवान के सुंदर चरण चिन्ह भी है, बहुत सुंदर गिरिराज की शिला में। और श्याम कुटी में गिरिराज जी का जो दर्शन है वो आरंभ होता है। और ग्वाल पोखरा जो है उसको मोर रूपी गिरिराज के कान बताए गए हैं, वो कर्ण स्थान है उसका। राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र स्थान है, दान घाटी उनका कंठ है और ग्वाल पोखरा उनका कर्ण स्थान है। और पुछरी यानी कि आगे आनी और के आगे उनकी पुछरी यानी कि पूंछ का स्थान है। अभी हम चलेंगे मानसी गंगा के पास, जो लोग दोपहर में नहीं थे उनको दोबारा बता देंगे कहानी मानसी गंगा की, बहुत सुंदर कहानी। एक कहानी ऐसी है कि भगवान के बाल लीला में जब भगवान बालों के साथ खेल रहे थे, बच्चों के साथ में जब वत्सपाल थे, तो वत्सपाल के लीला में अचानक एक राक्षस बछड़े का रूप धारण करके प्रवेश करता है, यानी कि वत्स बन के आता है, मानो उनके वत्सों में से एक वत्स है। और जैसे ही वो प्रवेश करता है और जैसे आम बछड़ों की तरह वर्ताव शुरू करता है, कृष्ण भगवान के ध्यान में आता है तुरंत कि ये राक्षस है। तो बलराम जी को इशारा करते, देखो ये जो है ना ये राक्षस है, तुम यही रहो मैं इसको देखता हूं। तो जैसे ही कृष्ण उसके पीछे जाते हैं तो वत्सासुर भागने लगता है। तो वत्सासुर का वध करते हैं भगवान, वत्सासुर का वध करते हैं, दोबारा लौट के आते हैं तो वाल कहते हैं कि आपने तो बछड़े को मार दिया, आप पापी हो गए, अभी आपको गंगा जी में स्नान करना होगा। तो उस समय भगवान ने अपने मन से गंगा जी को आह्वान किया। दो कहानी है इसकी, एक कहानी वत्सासुर वाली भी है और भगवान ने बीच में गोवर्धन के जाकर गंगा जी को मन से आह्वान किया और उनके मन से गंगा देवी प्रकट हो गई सबके सामने मगरमच्छ पे बैठी हुई और भगवान से गुणगान करने लगी, आदेश मांगने लगी। भगवान ने सबके सामने गंगा जी को आदेश दिया, अपना जल यहां पर डालो, मुझे यहां स्नान करना है। मतलब भगवान सर्व सृष्टि के मालिक हैं, सब जीव उनके अंश है और सेवक हैं, लेकिन फिर भी अपने प्रियतम भक्तों के आनंद को और अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए वो उनके सेवक की तरह काम करते हैं। अब यहां पर कैसे हो रहा है, ग्वाल बाल उनको आदेश दे रहे हैं, मानो दंडी दे रहे हैं कि आपने अपराध किया है, पापी हो गए आप, हमें गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा। और भगवान उस आदेश को सर पे रखकर उसके अमल भी कर रहे हैं, गंगा जी को अपनी शक्ति से बुला रहे हैं, लेकिन जरूर स्नान तो कर रहे ना। वो ऐसा नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, आप कौन होते हो, मैं नहीं करूंगा स्नान, ऐसा नहीं बोलते। ग्वाल बाल उनके लिए बहुत मूल्यवान वस्तु है, ग्वाल बालों की हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, हर उनकी इच्छा को वंदनीय मानते हैं। इसलिए लीला भी कर रहे हैं लेकिन साथ साथ ये भी दिखा रहे हैं कि ग्वाल बाल उनके सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं और वो भी उनके सेवक के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये भक्त और भगवान के बीच में हमेशा प्रतियोगिता चलती रहती है, स्पर्धा चलती रहती है, कौन किसकी अधिक सेवा करेगा, भगवान भक्त की करेगा कि भक्त भगवान की करेगा। जितना भक्त भगवान की सेवा करते हैं उतने भगवान अपने भक्ति की सेवा करने में लगे रहते हैं। क्योंकि मूल रूप में हम सब सेवक हैं, क्योंकि भगवान स्वयं अपने आप को सेवक मानते हैं, इसलिए सेवक भाव हमारे अंदर भी है और होना चाहिए। सबके सामने गंगा जी सागर जैसा एक बड़ा सरोवर उत्पन्न करती है गिरिराज के मध्य में, और फिर भगवान उसमें स्नान करते हैं, सब ग्वाल वाल भी स्नान करते हैं। उसके बाद में एक घटना होती है कि नंद बाबा शुदा मैया के साथ में और ग्वाल वालों के साथ में बैठकर सत्संग कर रहे थे। उस सत्संग में गंगा जी की महिमा का वर्णन होता है। वो ये कथा होती है सत्संग में कि एक बार गरुड़ जी अपने भक्ष्य सांप को पकड़कर आकाश में उड़ रहे थे और उड़ते उड़ते नीचे आ गए और गंगा जी के जल के पास उनका वो उड़ने लगे, तो हाथ में सांप पकड़ा था तो सांप की जो पूंछ है वो गंगा जी के जल को स्पर्श करती है, और जैसे ही जल स्पर्श होता है तो तुरंत सांप का जो रूपांतर है वो चतुर्भुज विष्णु के दूत के रूप में होता है, मतलब उसकी सारूप्य मुक्ति हो जाती है। गरुड़ को आश्चर्य होता है, हाथ में सांप था वो अचानक चतुर्भुज विष्णु का दूत बन गया, वो तो सम्मान से उसको हाथ में पकड़े बिना अपने कंधे में बिठाते हैं और उसको वैकुंठ लेके जाते हैं। इतनी गंगा जी की महिमा है। ये सुनकर तुरंत नंद बाबा खड़े हो जाते हैं, बोले अभी के अभी चलना है हरिद्वार, हमको अभी भी गंगा जी में स्नान करना। भगवान भी उस सत्संग में थे, भगवान को बहुत अच्छी नहीं लगी कि बाबा आप ब्रज छोड़ के क्यों जा रहे हो, ब्रज में सब कुछ है, गंगा जी भी है। उससे बालक है, बालक को क्या पता, बालक जिद करता है, नहीं बाबा आप नहीं जाएंगे, आपको यही रहना है, ब्रज छोड़ के मत जाना, क्योंकि ब्रज में सारे तीर्थ सारे कुंड सारे पवित्र स्थान सारी नदियां विराजमान है, आदि बद्री केदारनाथ जमुनोत्री गंगोत्री हर की पैड़ी हाँ और मानस सरोवर, जितने भी सिद्ध लोग ऊपर ऊपर के जितने भी गोखिला हिमालय के पवित्र स्थान है वो सब ब्रज में विराजमान है। गया कुंड है ब्रज में, ब्रज में राम सेतु है, ब्रज में श्रीलंका है, ब्रज में रामेश्वर है, ब्रज में क्या नहीं, ब्रज में द्वारका भी भगवान ने बसाई हुई है, हर तीर्थ और धाम ब्रज में विराजमान है। ब्रज एक संपूर्ण धाम है, ब्रज में आने के बाद में और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। इसी बात को बताने के लिए भगवान ने अनेक लीला किया है, राधा कुंड श्याम कुंड लीला भी इसीलिए किया है, सभी जितने भी तीर्थ स्थान है सबको आह्वान किया है और राधा कुंड श्याम कुंड में विराजमान कर दिया है। मानसिकंगा में गंगा जी को बसाया है, काम्यमन के आगे जाकर बद्री केदार और चार धाम को बसाया है, काम्यमन में श्रीलंका और रामेश्वर और सेतु बंधु को बसाया है, गया जी में जहां पर सब लोग जाके श्राद्ध करते हैं और गया जी में श्राद्ध करने से जिसको मुक्ति प्राप्त होती है वही गया धाम जो है स्वयं काम्यमन में आके बसा हुआ है, और ये सभी धाम जब ब्रज में आकर विराजमान होते हैं तो उसकी महिमा क्या है कि इन धामों को जब आप उनकी जगह पर जाकर भेंट देंगे तो आपके पाप नष्ट होकर आपको मुक्ति प्राप्त हो सकती है, लेकिन यही धाम जब ब्रज में आकर आश्रय लेते हैं तो पाप की मुक्ति होकर पाप से मुक्त होकर जब मुक्ति प्राप्त होती है उसके आगे जाकर भक्ति प्राप्त होती है और भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाता है। तो वही धाम जो अपने स्थान पर होते हैं तो उनकी कृपा शक्ति कम होती है, जब वो ब्रज का आश्रय लेते हैं तो वही धाम आसानी से प्राप्त होने लायक हो जाते हैं और उनके पास जाने से पाप नष्ट होने के साथ मुक्ति प्राप्त होने के साथ साथ भगवत प्रेम और भक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि ब्रज के अंदर आने के बाद इन धामों की शक्ति बढ़ जाती है, ये इसकी विशेषता है। 84,000 कुंड है काम्यवन में, तो 84 प्रमुख कुंड है, परशुराम जी ने 9 कुंड बनाए थे अलग से, ऐसे अनंत लीला स्थली है ब्रज में। तो वो कहते हैं क्यों जा रहे हैं आप, तो फिर जिद किया उन्होंने, बालक का जिद, फिर बाबा नहीं छोड़ पाए तो सबको लेके वो जमुना गोवर्धन के बीच में चले गए, तो विशाल कुंड था मानसी गंगा का। तो उस समय दोबारा भगवान ने अपने पिताजी के लिए गंगा जी को आह्वान किया और उस मानसी गंगा के जल से गंगा जी वापस प्रकट हो गई, मगरमच्छ में बैठी हुई और भगवान का गुणगान कर रही है, भगवान के लिए गीत गा रही है, पूजन कर रही है, वंदन कर रही है। तो ये जब देखा नंद बाबा ने तो उनको यकीन हो गया कि हाँ वास्तव में यहां पर गंगा जी विराजमान। फिर नंद बाबा ने सब ग्वाल वालों के साथ में मानसी गंगा में स्नान किया है। इस तरह से मानसी गंगा जो है मध्य में गिरिराज जी के विराजमान है। इस मानसी गंगा को निर्माण करने के बाद में भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीला किया है। वैसा है कि मानसी गंगा भगवान के नौका विहार का बहुत ही मशहूर और प्रिय स्थान है। अनंत प्रकार के नौका विहार लीला भगवान करते हैं। उस मानसी गंगा में सुंदर सुंदर कमल खिले हुए हैं, अलग अलग प्रकार के फूल, अलग अलग प्रकार के भंवरे उनमें घूमते हैं, गुंजन करते हैं। सुंदर सुंदर हवा जो सुगंधी फूलों का सुगंध लेकर, उनका पुकेसर लेकर, हवा में वो सुगंध लेकर भगवान के और गोपियों के पास में आती है। इस तरह से हवा भगवान की सेवा करती है। तो ऐसे ही जो बीच में मानसरोवर मानसी गंगा जो है उसके उत्तर दिशा में बरसाना है और दक्षिण दिशा में मथुरा है। तो गोपियां बरसाने से अपना माखन मिश्री दूध दही लेकर बेचने के लिए आती है मार्केट में, कहीं बाजार में। तो एक बार दक्षिण उत्तर से वो आ रही थी तो मानसी गंगा के किनारे आई तो उनको मानसी गंगा पार करनी थी, तो वो बोट के लिए देख रही थी कोई नाव मिलेगी तो अच्छा रहेगा। तो एक ही नाभिक था वहां पर, एक ही पुरानी टूटी फूटी बोट थी। नाभिक सोया हुआ था और एक जवान लड़का सोया हुआ था उसके। तो कहते हैं कि हमको छोड़ देंगे क्या, मानसी गंगा पार करके छोड़ देंगे गोवर्धन की। कहते हैं फिर क्या दोगे मुझे आप? तो उस समय पर कोई ऐसा जरूरी था कि सोने के मोहरे देकर उसका चलन करना है। तो उनकी बातचीत होते हुए कि कुछ मिठाइयां और कुछ दूध हमको मिलेगा तो हम चलेंगे। तो चलने लगते हैं और बीच मानसी गंगा में जब आते हैं तो ये कहते हैं कि अभी मुझे ना बहुत कमजोरी आ रही है क्योंकि भूख लग रही है मुझे, कुछ खिला दो, जो मेरा देना था आपको रेंट वो दे दो। तो वो उनको कुछ मीठा मिठाई खिलाते हैं, कुछ दूध दूध पिला देते हैं। तो ये सब खाने के बाद में उम्मीद थी कि चलेगा, तो कहता है कि अभी मेरा पेट जरा भारी हो गया है और मुझे नींद आने लगी, तो ऐसा मेरी इच्छा है कि मैं थोड़ा सो जाऊंगा और आप में से दो गोपियां मेरे हाथ को मालिश करना और दो गोपियां मेरे पैरों को मालिश करना। तो गोपियों को बड़ा गुस्सा आ जाता है, तो कहते हैं जरूर करेंगे, दोनों हाथ से दो गोपियां पकड़ेंगी, दो गोपियां दोनों पांव को पकड़ेंगी, उठाकर नदी के बाहर फेंक देंगी, मतलब बोट के बाहर फेंक देंगी। तो फिर वो तुरंत उठकर चलाने लगता है। थोड़ी देर बाद बोलता है कि बीच में जाने के बाद बोलता है कि अभी ये बोट के बीच में से पानी आ रहा है, क्योंकि पुरानी बोट है ना, आपका वजन इतना सब लोगों का हो गया है कि बोट अभी डूबने वाली है क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी पानी ऊपर आ रहा है। वो कह रहे क्या करें, गोपियां डर जाते हैं अभी किधर बीच में आने के बाद में क्या बोल रहा है कि अभी पानी आ रहा है। तो कहते क्या करें, तो कहते हैं कि अभी थोड़ा सा और मिठाई वगैरह देंगे ना तो थोड़ा वजन कम हो जाएगा, तो और मिठाई खिलाते हैं उसको। नहीं अभी भी वजन भारी है, पानी आ रहा है। तो कहते एक काम करो, सारे मटके जितने लाए ना आपने वो सब नदी में फेंक, वो मानसी गंगा में फेंक दो। तो फेंक देते हैं वो सब निकाल, जेजु बेचने के लिए जा रहे थे सारे मटके मानसी गंगा में फेंक देते। फिर कुछ देर बाद वापस चलाता है नाव और बोलता है कि अभी भी वजन भारी है, तो क्या करें, आपने इतने गहने पहन के आई हो, सारे गहने उतार के फेंक दो। तो बेचारे भोली गोपियां वो डर रही है बेचारे, बीच में नदी में पानी में क्या बोलेंगे, वो सारे अपने घेवर जो अपने गहने हैं अलंकार सब उतार के जल में फेंक देते हैं। उसके बाद में फिर जरा चलाता है नाव, बोलता है कि अभी भी भारी है ये सब, अभी अपने कपड़े उतार के पानी में फेंक दो। तो बेहतर यह होगा अभी कि आपको ही उठा के पानी में फेंक देंगे तो सब वजन बराबर बैलेंस हो जाएगा। तो फिर वो शांत हो जाता है। गोपियां बहुत गुस्सा करते हैं क्योंकि वो एक एक डिमांड करते जा रहा है, तो उसका हद जो है ना मर्यादा वो आगे जा रहा है मर्यादा की। ये सब होने के बाद में फिर वो बोट चलाता है और कुछ देर बाद में अचानक तूफान आता है, एकदम बादल छा जाते हैं, अंधेरा हो जाता है, बिजली गड़गड़ाहट होती है, बादल की आवाज आती है, बिजली कड़कती है, बहुत जोर से हवा आती है और साथ साथ ही नाभिक जो है जोरदार अपनी बोट को भी हिला देता है। तो गोपियां बहुत डर जाती है, इतना अंधेरा होता है और बहुत घनघोर वर्षा होने लगती है एकदम अचानक बिना किसी कारण, कोई मौसम नहीं कुछ नहीं। और ऐसा होने पर राधा रानी एकदम डर जाती है और डर के मारे वो उस नाभिक को जाकर ऐसे पकड़ लेती है कि वो मुझे बचाए। जैसे ही राधिका रानी उस नाभिक को पकड़ती है, अचानक बादल गायब हो जाते हैं और अंधेरा गायब हो जाता है, तुरंत चंद्रमा जो है क्षितिज से ऊपर आता है, हवा बहुत तेज चलनी बंद हो जाती है और सबको नजर आता है कि राधा रानी नाभिक को गले लगा रही। सब सखियां पूछती है, राधा रानी ये क्या व्यवहार है, ये कौन सी मर्यादा है? हाँ बोट पे चले थे, उसको रेंट देकर चले थे आगे और तुम उसको गले मिल रही हो, तुम उसको गले मिल रही हो, ये कैसे हो सकता है? बोला ये नाभिक नहीं है,
उसके वस्त्र से
वो यहां से मुरली निकालती है, ये नाभिक नहीं है, ये कृष्ण है। तो सब गोपियां हैरान हो जाते हैं, अरे इतने देर तक पहचाना नहीं उसको, गले मिलने के बाद पहचाना। फिर ऐसे कहा गया कि उसके बाद में बीच मानसी गंगा में पूरी रात भर नौका विहार करते हैं और उस एक रात में भगवान ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन समेट लेते हैं। मतलब कितने साल? एक कल्प के 43,20,000 साल होते हैं एक कल्प के, और ऐसे 1,000 कल्प जब होते हैं तो ब्रह्मा जी के 12 दिन 12 घंटे पूरे होते हैं, और इसके दुगना करेंगे ब्रह्मा जी की एक रात, मतलब सेम दिन 12 घंटे का, रात 12 घंटे का, तो 43,20,000 × 1,000 इतने साल इस पृथ्वी के एक रात में भगवान समा लेते हैं। जैसे भगवान ने रास लीला किया था उस समय भी उस एक रात में, जब रास पूर्णिमा शरद पूर्णिमा का दिन आता है उस एक रात में भगवान ने ब्रह्मा जी की एक रात पूरा समेट ली थी, उतना समय तक गोपियां नाचती थी भगवान के साथ। उसी तरह से इसमें लीला में भी भगवान ने नौका विहार किया है और उस समय मानसी गंगा के बीच में कई द्वीप भी हुआ करते थे, तो एक द्वीप में फिर दूसरे द्वीप में फिर नौका विहार फिर तीसरे द्वीप में फिर वहां पर वृंदा देवी का आयोजन फिर वहां पर भोजन फिर वहां पर गीत वहां पर नृत्य फिर तीसरे द्वीप में अलग राग से इस प्रकार से विविध पूर्ण से नाना प्रकार से नौका विहार भगवान करते। इस तरह से गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने बहुत वरदान दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत कृपा बरसाई है कि गिरिराज गोवर्धन के तले और गिरिराज गोवर्धन के आसपास और गिरिराज गोवर्धन पर भगवान ने अनंत प्रकार की लीलाएं की, साख्य रस की, दास्य रस की, माधुरी रस की, और सबसे बड़ी सुंदर लीला जो है वो गिरिराज को स्वयं उन्होंने उठाया है 7 दिन और 7 रात। बोलो गिरिराज गोवर्धन की, राधा रानी की, श्याम सुंदर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।